गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशो यमुना तीर वन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीर वन चारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय 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 नित्य लीला प्रविष्ण विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य दिवंद सत्तर सत श्री श्रीमदनाथ बिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय निरंतरा श्रीमद भागवतम की जय निताय गौर हरि प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वासुं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम स्कंद आठ अध्याय आठ खंड का प्रारंभिक श्लोक शिशु को वाच पीते गरेब शांकेन पीतास्ते मरदान वह ममंथुस्तरसा सिंधु अवृद्धानि ततो भवत् शिशुक उवाच पीते गरेब शांकेन प्रीतास्ते अमर दानवः ममन्तु तरसा सिन्धुम् अविरदानि ततो भवत् शिशुक उवाच पीते गरे वृषांकेन पीतास्ते अमर दानवः ममन्तु तरसा सिन्धुम् अविधानि ततो भवत् माता जी शिशु को आज सुखदेव गोस्वामी ने कहा पीते पान कर लिए जाने पर गधे विष का वृष अंकेण बैल पर बैठने वाले शिवजी द्वारा प्रीता प्रसन्न होकर ते वे सब हमार देवतागण दानवाः तथा असुरगण ममंतु उन मथने लगे खलसा बड़े वेग से सिंधुम शीर सागर को अभी धानी सुरभि गाय जो घी देने वाली है तथा उस मंथन से अभावत उत्पन्न हुई। अनुवाद तात्पर्य श्रीमदेश भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि शिवजी द्वारा विष्पान कर लिए जाने पर देवता तथा दानव दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हुए और नवीन उत्साह के साथ समुद्र का मंथन करने लगे। इसके फलस्वरूप सुरभि नामक गाय उत्पन्न हुई। तात्पर्य सुरभि गाय को अभिधानी कहा गया है क्योंकि वो मक्खन प्रदान करती है। मक्खन को पिघलाने से इसे घी बनता है जिससे बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न कर सकता है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता 18:5 में भी ये कहा गया है कि यज्ञ दान तप कर्म न ताज्यम कार्यम एव तत्। मानव समाज में शांति तथा समृद्धि बनाए रखने के लिए यज्ञ दान तथा तपस्या अनिवार्य कर्म है। यज्ञ अनिवार्य है। यज्ञ करने के लिए घी की नितांत आवश्यकता होती है और घी के लिए दूध आवश्यक है। दूध तभी उत्पन्न होता है जब पर्याप्त गाय हो। अतएव श्रीमद् भगवद गीता 18:44 में गो रक्षा की भी संस्तुति की गई है। कृषि गो रक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव अज्ञान देवनंदस्य ज्ञानंजन सलक चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूप गदा मह्यं ददाति सपदन्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरु वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजी साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता शिवशाखन्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुम लंगयति गिरिं यत्कृपातमहमन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुनदीनदारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बुजो श्रीराधामदनमोहन वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष सुन वाली पाश्चात्य देश हरे कृष्ण। तो आज एक नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। तो इस अध्याय के अंतर्गत क्या क्या उपाख्यान मिलेगा या इस अध्याय में किस किस घटना का वर्णन होगा इसके विषय में श्रील प्रभुपाद महाराज इस आठवें अध्याय का नाम सहित कुछ तात्पर्य पहले लिखा है उसका पाठ कर लेते हैं। क्षीर सागर का मंथन ये नामक ये आठवां अध्याय प्रभुपाद जी प्रारंभ कर रहे हैं। उनसे पहले कहते हैं इस अध्याय में बताया गया है कि किस तरह समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी प्रकट हुई और किस तरह उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। और आगे चलकर इस अध्याय में बताया जाएगा कि जब अमृत पात्र लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए तो असुरों ने तुरंत ही वह पात्र उनसे छीन लिया, किंतु भगवान विष्णु मोहिनी रूप लेकर प्रकट हो गए और मोहिनी संसार की सर्वाधिक सुंदर स्त्री के रूप में भगवान प्रकट हुए थे और असुरों को मोह में डालने तथा देवताओं के हेतु अमृत बचाने के लिए उनका प्रागट्य हुआ था। जब शिवजी सारा विष पी गए तो देवता तथा असुर दोनों में उत्साह बढ़ा और उन्होंने मंथन का कार्य फिर शुरू किया। इस घटना से पहले एक सुरभि गाय उत्पन्न हुई। महान साधु पुरुषों ने इस गाय को शिकार किया जिससे उन्हें इसके दूध से घी मिल सके और जिससे वे महान यज्ञों में इस घी की आहुतियां दे सके। तत्पश्चात उच्च सेवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। इस घोड़े को बलि महाराज ने ले लिया। तब ऐरावत तथा अन्य हाथी प्रकट हुए जो किसी भी दिशा में कहीं भी जा सकते थे। तत्पश्चात अथनिया भी प्रकट हुई। कौस्तुम्ब नामक मणि भी उत्पन्न हुआ जिसे भगवान विष्णु ने लेकर अपने वक्ष स्थल पर धारण कर लिया। फिर पारिजात पुष्प तथा ब्रह्मांड की सुंदरतम स्त्री अप्सराएं उत्पन्न हुई। तब लक्ष्मी जी प्रकट हुई और जिसकी पूजा देवताओं महान ऋषियों गंधर्वों तथा अन्य लोगों ने आदर सहित की। लक्ष्मी जी को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे वे पति के रूप में स्वीकार करती। अंतर्गोत्तम उन्होंने भगवान विष्णु को अपना स्वामी के रूप में चुना। भगवान श्री विष्णु ने उन्हें सदा सर्वदा के लिए अपने वृक्ष स्थल पर रहने का स्थान दे दिया। लक्ष्मी तथा नारायण के इस मिलन से वहां पर उपस्थित देवता तथा अन्य सामान्य लोग अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु असुरगण लक्ष्मी जी द्वारा उपेक्षित होने के कारण अत्यंत हताश थे। फिर वारुणी अर्थात सुरापान की देवी उत्पन्न हुई और भगवान विष्णु के आदेश से असुरों ने उसे स्वीकार किया। तब असुर तथा देवता नवीकृत उत्साह से पुनर्मंथन करने लगे और इस बार भगवान विष्णु के अंशावतार धन्वंतरी जी प्रकट हुए और वे अत्यंत सुंदर थे और अमृत से युक्त एक पात्र हाथ में लिए हुए थे। असुरों ने उनके हाथ से तुरंत ही वह पात्र छीन लिया और भागने लगे। देवतागण अत्यंत खिन्न होने लगे कारण विष्णु की वो इसी के कारण वो विष्णु की शरण में गए। धन्वंतरी से अमृत पात्र छीनने के बाद असुरगण परस्पर लड़ने लगे। भगवान विष्णु ने देवताओं को सांत्वना प्रदान की और जिससे वे लड़े नहीं अपितु मौन रहे। और जब असुरगण परस्पर लड़ रहे थे तो भगवान मोहिनी अवतार के रूप में प्रकट हुए और मोहिनी ब्रह्मांड में सर्वाधिक सुंदर स्त्री थी। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी के द्वारा इस पूरे अध्याय का एक संक्षिप्त में वर्णन किया गया और विस्तार से हम लोग फिर एक के बाद एक श्लोक का अध्ययन करेंगे उनकी शिक्षाओं के अनुसार। तो आज के इस श्लोक श्री सुखदेव जी द्वारा उच्चारित कहते पीते गर्भ शांकेण पितास्तमृदान व ममंथु स्तरसा सिंधु भविदानी तत्व भवत। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब शिव जी ने विषपान कर लिया उनके बाद लोगों को थोड़ा शांति हुआ, क्योंकि आपने देखा विष प्रकट हुआ और संसार के समस्त जीव एक बहुत बड़ा पीड़ा का अनुभव करने लगे, क्योंकि उन लोगों ने सोच लिया कि अभी मृत्यु निश्चित है। इसलिए देवता और दानव भी अत्यंत हतोत्साहित हो गए। बोले तो बताया नहीं अमृत के लिए हम लोग को मंथन में लगा दिया विष्णु ने और देवताओं के कहने पर हम लोग चढ़ गए और मंथन प्रारंभ किया तो विष निकला। भाई जिसमें जो होता है वही निकलेगा ना, और क्या इस संसार में विष के अलावा कुछ है ही नहीं, तो विष ही निकलेगा है ना। तो अत्यंत हतोत्साहित हो गए। ये जो मृत्यु है ना, हम लोग को हतोत्साहित करने के लिए है ना। जो मरण दिया गया है ना भगवान के द्वारा, बीच 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 में मार दिया जाता है हम लोग को, इसलिए मार दिया जाता है कि व्यक्ति हतोत्साहित होकर के भजन करे, इसमें ना लगे, संसार का कोई कार्यक्रम में ना लगे। लेकिन जिनको सांसारिक पदार्थ चाहिए वो तो वहीं पर मेहनत करेगा। जो माया के द्वारा जिन जीवों की दृष्टि अंधी हो गई है या अहंकार के कारण स्वयं को कर्ता सोचते हैं, वो भय के कारण थोड़ी देर शांत रहते हैं। जैसे भय मुक्त होते हैं वैसे पुनः वो तो बस अपने कार्यक्रम हाथ में लेते हैं। ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि प्रीतास्ते हमारे दानव, लोग प्रसन्न हो गए, अच्छा हुआ शिव जी ने जहर पी लिया, अगर जाएंगे तो वो जाएंगे, हम बच गए, अब हमारा कार्यक्रम आगे का चालू हो। वो लोग ने अपना कार्यक्रम वो जारी रखा। इसको कहते हैं सुखदेव गोस्वामी प्रीतास्ते अमर दानवा, वो लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। किस लिए? बोलते मृत्यु टल गई जैसे तैसे। ये मृत्यु टल गई ना, बस अभी मेहनत करो। सुखदेव गोस्वामी पाद इस श्लोक को ऐसे उच्चारण किए हैं, वो कहते हैं ममंतु तरसा सिंधु। अब ये लोग अत्यंत बलपूर्वक उन सिंधु को मथने लगे। अच्छा चलो इस बात को देखा जाए कि बल किसने प्रदान किया था। जी एक आचार्य ने टिप्पणी किया है इसके विषय, इसलिए मैं साहस कर रहा हूं थोड़ा बोलने का, और आप लोग ने भी सुना है ना। कहते नीचे विष्णु ऊपर विष्णु है ना, और साइड में देवता की ओर से भी विष्णु खींच रहे थे, और सबके उन शरीर में भगवान ही प्रवेश किए थे अपने माया के गुणों के द्वारा। जी हाँ आपने पाठ किया होगा, जैसे देवताओं में सत्व के रूप में जैसे भगवान ने प्रवेश किया तो ये तो सोच रहे बस बस अभी हो जाएगा है ना। क्या हो जाएगा? मरण के अलावा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बस जीव सोचता है बस अभी काम बन जाएगा। अरे ये नहीं सोचते हैं कि भगवान ने जो बल बुद्धि जो कुछ भी दिया है वो किस लिए दिया है। बस अहंकार में चूर होकर के ये लोग उन देवता लोग बोले वाह 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 शाबाश शाबाश, अभी दोबारा एक बार प्रारंभ किया जाए, और भगवान रजोगुण के रूप में असुर में प्रवेश हो गए, तो असुरों का बल भी जबरदस्त बढ़ गया है ना। और साथ में उन सर्प में निद्रा के रूप में तमोगुण के रूप में प्रवेश किया। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये मंथन किसके द्वारा हो रहा है? तो संसार मंथन भी हम लोग करते हैं तो किसके द्वारा हो रहा है? हाँ इसको भी कहना ही पड़ेगा भाई, हम तो संसार मंथन करके अंदर से अमृत निकालना चाहते जो हमें प्रिय है भोग है ना, उस अमृत को हम लोग खींचना चाहते हैं, उनको चखना चाहते हैं जैसे कभी नहीं चखा है। ये विषय बारंबार भोगे हुए विषय के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो वस्तु तो दुर्दांत है, वो मानते ही नहीं है। जैसे गत साल हम लोग ने आम खाया ही था, लेकिन अभी आम जैसा अरे आम आया और अनेक अनेक प्रकार का जो आम है उनका अनेक अनेक प्रकार का टेस्ट है, प्रकृति तो बढ़ेगी, पर हमको ऐसा लगता है बस पहली बार खा रहे हैं। इस संसार का भोग ऐसा है, इस संसार का भोग यहां किस लिए रखा गया है? जीव को थकाने के लिए कि भोग करके उब जाए। लेकिन हम लोग एक ऐसे हैं उबते ही नहीं, मतलब आती ही नहीं, बस लाइए लाइए और लाइए, बढ़िया से दीजिए। हाँ, अनंत काल से इन प्रकृति को हम लोग भोग कर रहे हैं। ये प्रकृति का भोग है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में इस सब प्राकृतिक विषय का हम लोग भोग करते हैं। इस शिल प्रभुपाद सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, लेकिन ये जो दूसरे श्लोक है ना उसमें वो बढ़िया से समझ में आएगा, इसलिए मैं इसमें से नहीं बोल करके कुछ बातें और जो ध्वनित हो रही है श्लोक से उनको बताना चाहूंगा। देखिए, तो ममंतु तरसा, तरसा का अर्थ होता है बलपूर्वक, उस समुद्र को फिर से बलपूर्वक प्रसन्न होकर के बलपूर्वक उत्साह में आकर के वो लोग लगे मंथन करने। देखिए, जो दुश्मनी लोग हैं ना वो मंथन संसार के मंथन में नहीं लगे रहते हैं, क्योंकि इससे केवल मृत्यु निकलेगा और कुछ नहीं, वो जान गए हैं। इसलिए वो लोग अपने उन चित्त में मंथन करते हैं और चित्त को मथते हैं, और चित्त मंथन से उन परमात्मा का दर्शन होता है। ये ऋषि मुनिगण ये कार्य करते हैं, जैसे परपर में प्रभुपाद जी इसको लिखे हैं, है ना। मन से विषयों का चिंतन नहीं करके मंथन करते हैं मन का, विस्तार से अपनी भोगी हुई चीजों को याद करते हुए, और आगे जिस भोग को वो प्राप्त करेंगे इस जीवन में उसका तारतम्य निकालते हैं। इसका तारतम्य क्या है? वो निकलता है उसमें से केवल विष, केवल मारने वाले विष से ही निकलते हैं उससे। इससे विषयों का चिंतन कभी नहीं करते बुद्धिमान व्यक्ति, वो अपने इन सूक्ष्म शरीर का मंथन में लगे लग करके वहां से उन परमात्मा मार्ग पर प्रशस्त होते हैं। क्या कहते हैं, हवीर धानी अभाव, हवीर धानी जैसे पृथ्वी का एक नाम है जीवदानी, है ना, जीवों का धाम है, बद्ध जीवों का ये धाम है, जीवदानी बोलते, उसी प्रकार ये हवीर धानी हविष्य जो यज्ञ में आहुति देने वाले घी है उनको हविष्य बोलते हैं। लेकिन वो हविष्य लेकर के भी उनका ऋषि होते हुए भी वे लोग ठीक से उपयोग नहीं करते हैं। पर जिसको सुर भी गाय मिल जाए तो स्वर्ग तो अत्यंत सुलभ हो जाता है सुरभि से, लेकिन स्वर्ग भी आखिर मनोमंथन के द्वारा इस विचार पर व्यक्ति ठहरता है कि स्वर्ग भी अंततः दुखदायी है, उसमें कोई सुख नहीं है, क्योंकि जिस सुख की लालसा हमारे चित्त में है उनकी पूर्ति तो वहां जाकर के भी नहीं होगी, केवल उनकी पूर्ति श्री कृष्ण सेवा से होगी। इससे देखिए अगले श्लोक में कहते हैं कि तम अग्निहोत्र ऋषियों जगृह ब्रह्मवादी न, फिर ब्रह्मवादी लोगों ने उनको ग्रहण, ऋषि मुनियों ने उनको अपने काम की वस्तु है, जो सबको बल प्रदान प्रदान किए, हमको सब कुछ प्रदान किया है, उसके विषय में कोई सोच नहीं है, ये हमारे लिए काम की वस्तु है। भगवान के अलावा या कृष्ण के अलावा कोई जीव के लिए काम की वस्तु है ही, लेकिन देखिए ब्रह्मवादी लोग भी जगगुरु उनको ग्रहण कर दिया और काम की वस्तु आ गई है, यज्ञ करेंगे और ब्रह्मलोक प्राप्त करेंगे, जाइए फिर। लेकिन पुनरावर्ती नो अर्जुन, तो उनके पास भी ठीक विचार नहीं है। श्री लक्ष्मी जी के पास ठीक विचार है। विश्वनाथ ठाकुर अपने टीका में या अपने पर्पट में कुछ बातें लिखते हैं, उनमें हम लोग जाकर के देखते हैं। एक छोटा सा एक श्लोक रचना किया है, कहते हैं मंथनो अद्भुत रत्न नाम लक्ष्मा विष्णु वृत्ति। देखो लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, उनको सब लोग चाहते थे, आगे कथा आएगा, लेकिन उन्होंने वरण किसका किया? अब ये सुनकर के जीव को बुद्धि आना चाहिए कि नहीं, है ना, कि साक्षात लक्ष्मी समस्त भाग्य समस्त संपदा की अधिष्ठात्री है, वो साक्षात भगवान का वर्णन करती है। तो इनमें से कुछ थोड़ा हमारे हाथ में लग करके हमारा क्या लाभ होगा, है ना। लेकिन बस जीव का एक अपना पर्पस है, देखिए भगवान की उपेक्षा हो जाती है। हम जब कभी भी हम भक्तों को समझना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद महाराज ने हमको इतना बुद्धिमान बना दिया है, जिस बुद्धि को काम में लगा करके हम लोग अपना सकल कार्य निकाल सकते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, परमार्थ सिद्ध कर सकते हैं। और जो सामान्य ऋषि मुनियों तक को उपलब्ध नहीं है, उसी प्रकार का सर्वोत्कृष्ट परमार्थ व्यक्ति प्राप्त कर, जो परमार्थ का अर्थ है परमार्थ, वही प्राप्त कर सकता है। देखते हम सबके शरीर को, हमारी बुद्धि की चालना, जो कुछ भी होता है हमारा मन में संकल्प विकल्प, ये सब भगवान के द्वारा, भगवान की माया के द्वारा उठाया जा रहा है। तो भगवान के द्वारा हुआ ना कार्य, शक्ति और शक्तिमान में भेद करते हुए तो भगवत कार्य हुआ। आप सोचिए हमारे चित्त में कितना सुंदर संकल्प उठा है कि हम लोग वृंदावन की ओर भागे हैं, चलो 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 ब्रज जाएंगे, ब्रज जाएंगे। अब बाकी क्या रहा है? इस विचार को देख करके श्रील प्रभुपाद महाराज ने यहां घसीट करके ला के रख दिया, और वो भी बुढ़ापे में बहुत सुंदर, क्योंकि घर में गाली खाना तो कम से कम बंद हो जाएगा, है ना। और इधर सब पूजा करेंगे, अरे ब्रज में रहते हुआ जय हो, जय हो महाराज ब्रज में, धन जय हो, गाली नहीं खा रहे, बहुत बढ़िया है। क्योंकि यहां आकर के भी पुनः उसी को करेंगे तो कोई ज्यादा लाभ नहीं है। जैसे ऋषि मुनि यहां पर वर्णन करते हैं अगले श्लोक में, जैसे इसी में जीवदानी निकला तो सॉरी अविर्धानी, तो अविर्धानी को ऋषियों ने ग्रहण किया। ऋषियों अग्निहोत्री, तो कोई ज्यादा लाभ तो किया नहीं। इसलिए मंथन बहुत आवश्यक है, लेकिन चित्त का मंथन। और जब श्री प्रभुपाद महाराज ने हमको बता दिया कि आप आत्मा है, आप ये देह नहीं है, मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर, ये दो में से कुछ आप नहीं है, क्यों आप सूक्ष्म शरीर की इच्छा की पूर्ति किए जा रहे हैं? वहां तो माया के कारण डिमांड उठती जाएगी,
ये तो माया की चाल है, क्योंकि वो तो ले जा रही है मृत्यु की ओर। इसी विचार, इसी प्रकार विचार उठा उठा करके उनकी पूर्ति करते हुए वृंदावन को जो प्राप्त हो गए जो जीव, उनको सोचना चाहिए कि मैं वृंदावन क्यों आया हूं। या ऐसे सर्वोपरि जो लाभ मुझे मिला है वो क्यों दिया गया है, तब जाकर के कुछ चित्त में वैराग्य प्राप्त होगा मंथन करने पर। इतना सुंदर अवसर सबको नहीं मिला, हम लोग को मिला है ना। तो जितना भी हमारे जीवन में बाकी आयुष्य है ना, संकल्प के साथ व्यक्ति को इन भोगों से दूर रहने का संकल्प करके भजन करना पड़ेगा, संकल्प लेकर के। अभी युवक को होते हुए प्राप्त हो गया थे ना, सोचे कि हम लोग बुढ़ापे के फेरे में रहेंगे। नहीं नहीं, वो आता भी नहीं है कभी बुढ़ापे, ऐसा भी बीच में चले जाते हैं। इसलिए कुमार आते तो प्राज्ञ भागवतान धर्मानी प्रहलाद महाराज शुरू में इनको उपदेश दिए। बुद्धिमान व्यक्ति तो जब से समझा तब से जन्म समझना चाहिए। जब से श्रील प्रभुपाद महाराज का पुस्तक हमारे हाथ में आया, समझिए हमारा एक दोबारा जन्म हो गया है। इसी के ऊपर चिंतन मंथन ये सब कुछ उसी के ऊपर चले, ध्यान उसी के ऊपर रहना चाहिए जी। देखिए कितना अनादर पूर्वक यहां वास करते हैं, है ना। एक तरीके से धाम का अनादर का भक्ति का अनादर, भक्ति का अनादर का अर्थ है भगवान का अनादर। देखिए यहां समुद्र मंथन लीला को ले लीजिए, सब कुछ उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ, देवता दानवों को सबको मानवों को भी। और हम जब तक जिएंगे तब तक हमारे लिए भगवान कितना जीवों के प्रति आदर रखते हैं। ठीक है ठीक है, इसी जन्म ने तो अगले जीवन में आ जाएगा है? लेकिन मेरे पास आ जाएगा। आदर पूर्वक पालन करते हैं और हम लोग अनादर पूर्वक भोग करते हैं है? कितनी उपेक्षा हम लोग करते हैं भगवान की, हद हो गई उपेक्षा की। ब्रज में ला करके रख दिया है? लेकिन हद है। हम कुछ ना कुछ भगवान से भिन्न चाहते हैं, जबकि समस्त शक्ति हम स्वयं एक शक्ति भगवान की है। अहंकार ने बुला दिया है, इस अहंता ने, कि मैं स्वयं कृष्ण की सेवा का एक उपकरण हूं। मेरे द्वारा ठीक से सेवा संपन्न होनी चाहिए और वृंदावनीय भक्तों की सेवा का चांस दे दिया है। जाओ जाओ सेवा करना चाहते हैं ना, ठीक है, भगवान के सर्वोपरि स्वरूप की सेवा करो। लेकिन बेटा भोगों की ओर नहीं देखना है ना। लेकिन बेटे लोग तो ना लायक, लायक नहीं हुए फिर भी है ना। अगर वही भोग हम वृंदावन में आकर के भोगेंगे तो उसके लिए क्या बोला जाए है। तुच्छ एक नरक के कीड़ों को उपलब्ध है, उसके लिए क्या बोला जाए है? एक नारी की जीव को उपलब्ध है, देखिए हम कितना अनादर पूर्वक हमारा समय बिता रहे। थोड़ा सा भी आदर नहीं है। और भगवान ने अपनी अमूल्य वस्तु भक्ति हमको दे दिया है। ठीक है, हम कर्म मार्ग रखा होता तो दूसरा बात था, ना, ज्ञान मार्ग पर चढ़ा दिया होता तो दूसरा बात था, लेकिन एक अपने भक्त का सानिध्य दे करके हम लोग को प्रेरित किया गया है। इसके ऊपर मंथन होना चाहिए और ये सोच करके व्यक्ति को रात दिन एक कर देना चाहिए, रात दिन। संसार के सारे भोग उन सबको एक साइड रख करके व्यक्ति को एक कार्य कर देना चाहिए। भक्ति एक अद्भुत वस्तु भगवान ने हमारे हाथ में रखा है, देखिए कितना आदर पूर्वक भगवान ने हमको भक्ति दिया है। ठीक ठीक है, ये जीव मेरा भजन करे और उसमें भी मेरा मूल रूप का भजन करे, बताइए जरा। और सर्वश्रेष्ठ उनके लिए जो भोग मैंने वृंदावन में रखा है, उन सर्वश्रेष्ठ भोगों को भोगे, मेरी सेवा करके उस मेरे प्रेम का वो लोग भोग करें या मेरा आस्वादन करें। लेकिन हम भी ये देवता और दानव की तरह फैल जा रहे हैं, कभी कभी लगता है ना, चल इतना भगवान ने किया हमारे लिए, लेकिन हम तो फिर उपेक्षा करके जी रहे हैं। भगवान के अलावा जो कुछ भी चाहना, ये उपेक्षा, भगवान की भक्ति की उपेक्षा हो गई। सूक्ष्म बातें समझ में नहीं आएगी। हमारा अहंकार के पोषण के लिए जो हमें पसंद है वो हम चाहते हैं, तो भगवान की उपेक्षा हो गई 101%। ये बात है, लेकिन भगवान फिर भी उन भक्तों का आदर करते हैं, है ना। और सुख चाहिए फिर भी तो भगवान वो सुख दे करके भी हम लोग को ले जाएंगे, बताइए बताइए क्या महिमा लिखा है। हम समझते नहीं है भक्ति है? सब प्रकार के भोग दे करके भी भगवान उनको अपने धाम में वो ले जाने के लिए रेडी है। उत्सुक होना चाहिए जीव को, है ना, ये उत्साह के लिए बात है। आइए हम एक श्लोक में जाते हैं, ये बृहद भागवतामृतम का श्लोक है, श्लोक बहुत बढ़िया है, एक श्लोक ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन इस विषय में लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए भक्ति करते हुए भी हमारे चित्त में भोगों की कामना है ना, तब कहते कि फिर भी भगवान अपने भक्तों के प्रति कितना आदर व्यक्त करते हैं, भले सकाम भक्त है, कहते भक्ता भगवतो यतु सकामा स्वेच्छया अखिलान भुंजाना सुख भोगांस्ते विशुद्धा यान्ति तत्पदम। जो लोग विविध प्रकार की कामना से भगवान का भजन करते हैं ना, उनके लिए सनातन गोस्वामी पर लिख रहे हैं कि ये सभी सकाम भक्तगण अपनी इच्छा से समस्त सुखों को भोगते हुए अंततः भक्ति की कृपा से वो वैकुंठ चलेंगे। पर एक बात है, ब्रज वह आकर के अगर वैकुंठ मिल गया तब तो ब्रह्मचारी जी बोलते कुछ नहीं मिला, ऐसा हाथ किया उन्होंने, इशारा किया। ये बहुत बहुत सुंदर बात है, सनातन गोस्वामी बात क्यों ऐसा लिखेंगे, समझने वाली बात है, टाइम तो है मेरे पास है। वो कहते भुंजाना, देखिए वर्तमान क्रिया का प्रयोग है, भोगते हुए, ये भक्त को फैसिलिटी है, अपने भक्त को भगवान कितना आदर करते हैं और हम भक्त लोग कितना अनादर करते हैं उनको देखना चाहिए, ये तो मंथन है ना। समुद्र मंथन तो चल गया, वो चल रहा है, चलेगा, लेकिन मनोमंथन भी बीच बीच में आ जाए बहुत बढ़िया रहेगा, तो देखिए ये कहते हैं कि देखिए तो बुंजाना सुख भोगांश ते विशुद्धा यांति तत्पदम। भक्ति के प्रभाव के कारण वर्तमान में भी वो शिष्टाचारी है, परतंत्रता कोई परतंत्रता नहीं है कर्मियों की तरह भक्तों का, पर स्पेशलिटी क्यों दिया गया है? आसानी के भजन कर अत्यंत सरलता से भजन करने के लिए ये सब कुछ व्यवस्था भगवान ने हमको दिया है, या भक्तों को एक स्पेशल व्यवस्था क्यों देते हैं? अपना प्रेम प्रदान करने के लिए व्यवस्था दिया है वो कहीं मुक्त मुक्त न हो जाए। अपना प्रेम देना है भगवान को आदर सहित। कहते हैं देखो कि वो उन कहते हैं उन भक्ति के प्रभाव के कारण व्यक्ति वर्तमान में भी उन कर्म परतंत्र नहीं रहता है। बहुत सुंदर बातें लिखी है। जितने भी कर्मी गण हैं वो कर्म का भोग करते हुए कर्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, भक्त नहीं। सनातन गोस्वामी बात बोले भक्ति के प्रभाव ऐसा है, तो इतनी प्रभावशाली भक्ति के द्वारा सबसे वैभव युक्त वैकुंठ सुख को व्यक्ति को चाहना चाहिए, इनकी इच्छा करनी चाहिए। और खासकर ब्रजवास जिनको मिला है या ब्रज में रहने का मौका या ब्रज के स्पर्शन दर्शन इत्यादि जिनको दिया गया है, एक विशिष्ट गिफ्ट है। इसको कहने के लिए अवतारणा किया जा रहा है इस श्लोक का। अपने पटपट में लिखते हैं कि ये सॉरी ज्यादा दूरी पर नहीं जाऊंगा मैं। भक्ता इति द्वाभ्याम सकामा भक्ता ये खलु भोगा अभिलषण भगवंतम अभजन्ते इति अर्थ। वो कहते हैं कि दो प्रकार के भक्त, सकाम और एक निष्काम भक्त। वो कहते हैं कि सकामा भक्ता ये खलु भोग अभिलाषण, जो भोगों की अभिलाषा से भगवान की भक्ति करते हैं उनको सकाम भक्त बोलते हैं। लेकिन उन सकाम भक्त भी उन वैकुंठ को जाएंगे। कितना बड़ा गिफ्ट भक्ति देकर के भगवान ने जीवों के लिए रख दिया है। इसी को बताते हुए कहते हैं कि देखिए स्वेच्छे इति अनेन कर्म पार्थंत्य अधिकम निरस्तम। ये जो मूल सूक्त में लिखा है कि स्वेच्छा अखिलान भोगान, भोगाना वर्तमान क्रिया का प्रयोग है। कैसे है? स्वेच्छा अखिलान भुंजाना, वर्तमान में भी अखिल भोग उन भक्त को उपलब्ध है, समस्त भोग। कैसे? क्योंकि उनके पास कर्म का परतंत्रता नहीं है। एक कर्मी जिसको अपने कर्म को भोग रहा है उसी प्रकार की व्यवस्था भक्तों में नहीं है। कहते स्वेच्छेति अनेन, ये स्वेच्छा अर्थ लिखने का ये शब्द लिखने का अर्थ है कर्म पारतंत्र अधिकम निरस्तम, कर्म की परतंत्रता खत्म हो जाती है अपनी स्वेच्छा से, अभी मालूम नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम यहां इच्छा के अनुसार भोग करना चाहते हैं वो रोग के समान है, इसलिए भगवान इस भोग को नहीं देंगे, लेकिन अगले जीवन में पता चलेगा सब कुछ भक्तिकारी व्यक्ति को। उसी बात को यहां बता रहे। देखिए वो कहते हैं क्या अखिलान इति अनन्य तैलो क्या महर लोक आदि अर्चित आदि स्वपित तथा प्रपंच अंतर्गत श्वेत दीप रमा प्रिया आदि वैकुंठेशु वर्तमान भोगागृहिता। ये भक्ति उनको कहां कहां ले जाएगी ये बता रहे। जो अर्चिस इत्यादि देवता लोग भोग करते हैं, जो जन लोग महर लोग तप लोग इसमें जो भोग है वो केवल भक्ति सकाम भक्तिकारी को मिलेंगे सब, और वो भोगते हुए आसानी के साथ भोग की इच्छा भी त्याग देगा। वर्तमान में व्यक्ति को सोचना चाहिए इन सारी बातों को। वर्तमान में भोग नहीं भोगना चाहिए। हा इसीलिए क्योंकि इतना सारा लंबा काल निकल जाएगा भक्ति करते हुए, सकाम भक्त भी इन सब सुखों को भोगता हुआ जाएगा, कितना समय लग जाएगा। जैसे जो ब्रह्मलोक गया तो द्विपरार्ध साल, करोड़ों खरबों साल निकल जाएगा, वो भी मिलेगा तो वैकुंठ मिलेगा। प्रेम प्रेम नहीं, यद्यपि प्रेम ही वैकुंठ, लेकिन एक विशिष्ट प्रेम के लिए जो वृंदावन मिला है वो प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। अपने चित्त में व्यक्ति मंथन करे इस बातों का कि हमको जो गिफ्ट मिला है उनका पूरा लाभ। इसी जीवन के बाद तत्काल उन दूसरे ब्रह्मांड में जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला है उस लीला में सीधा प्रवेश करना है, न तो इधर उधर, क्योंकि भोगों की कामना रही तो फंस जाएंगे और वेटिंग लिस्ट में डाल दिए जाएंगे। भक्तों को ध्यान से इन बातों को सुनना चाहिए, सनातन गोस्वामी पाद का उपदेश, और इसको ग्रहण करके अपने जीवन में एक एक शब्द उतारना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, तब भक्ति में उत्कंठा बढ़ेगा। जी हाँ, और नहीं तो वैसा का वाई ढीला डाला भक्ति चलता रहेगा, है ना, और अगले जीवन में जाके फंस जाएंगे कहीं देवता लोक में, तो कहीं चूंकि पहले स्वर्ग में भेजा जाएगा। 36,000 साल तो ऐसे ही गया खटाक से, जाओ जाएंगे, भक्ति देगी सब कुछ देगी, लेकिन व्यवस्था देखिए। फिर अर्ची आदि देवता में चले गए, हो गया मंगल, फिर वो लोग तो बहुत लंबा लंबा आयुष्य रखते हैं। और फिर ब्रह्म लोक में ये लोग हवीर धनी निकला, बोला ठीक है ब्रह्म लोग जाएंगे ब्रह्म, लेकिन हम लोग का विचार या वृंदावन में जो वास कर रहे हैं उनका विचार गोलोक वृंदावन के अलावा कहीं नहीं होना चाहिए। और केवल वो बात में नहीं रहना चाहिए, उसको प्रवृत्ति में लाना चाहिए, उसको जीवन में अप्लाई करना चाहिए। इस प्रकार की उत्कंठा, जिस प्रकार की उत्कंठा युक्त प्रेम जो ब्रजवासी कृष्ण को करते हैं, उसी प्रकार की भावना लेकर के चलना चाहिए। बहुत सुंदर बातें लिखते हैं, आगे कहते हैं कि सुखम सुख भयान भोगानी इति अनंत त्रैलोक के अंतर्गत भोग स्थित दोष दुखादिकम निराकृतम अखिलान का अर्थ कहते हैं, उनके साथ कहते हैं कि देखिए ये सुख प्राप्त करते हुए भी उन भोगान को कहते भोगते हुए भी त्रैलोक के अंतर्गत जितने भी लोक है उन समस्त लोक के समस्त भोग भोग करके भी उनमें जो दोष है दुख, वो दुख भोग नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मूल श्लोक में सुख भोगांस्ते, केवल सुख ही भोग करेंगे वहां का दुख नहीं। देखिए देखिए इसी बात को वर्तमान में लिया जाए, वर्तमान में हम भक्ति करते हैं भजन करते एकदम प्रैक्टिकल है, ये जो बातें चल रही है और साधु पुरुष का जो अनुभव है वो अनुभव साधक भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले उनका बात हमारे चित्त में चला जाएगा कि यार ये कुछ बातें हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वर्तमान में भी देखिए जिस दुख का भोग हमें हमारे जन्म स्थान में वो भोगना पड़ता था, उनसे अलग करके आप ब्रज में डाल दिए गए हैं, है? और ब्रज में आने का अर्थ होता है स्वयं भगवान के हाथ में लोग हैं, अभी स्वयं भगवान उनका पालन करते ब्रजवासियों का ना, उनकी रक्षा इत्यादि करते। 5 मिनट बाकी है। मैं वो जाऊंगा ही नहीं, कभी नहीं गया, लेकिन जब तक है तो खींचने दो भाई, क्योंकि इतना सुंदर बात लिखते हैं इसमें। दुखाधिकम निराकृतम, वहां केवल सुख भोग करेगा, दुख नहीं। जैसे यहां हम लोग सुख भोग करते हैं, दुख छोड़ के आए जहां है वहां। अब हमारा स्वभाव पकड़ लेगा, बार बार उनको याद करते हुए रोएगा तो मरो फिर क्या करे इधर वृंदावन में भी। अब क्या करे यार हम तो, जब भगवान अपनी याद दिलाने के लिए अपने स्थान में अपने घर में राधा रानी की कृपा में रख दिया है, फिर भी हम मुंबई याद करते हैं ना, दिल्ली याद करते, यह है इधर याद करते, तो फिर क्या करे है? उठा करके डाल दिया ना सुख में, सुख पूर्वक भजन करो बेटा वृंदावन में जाकर। नहीं करना है तभी भी राधे राधे कोई ना पुकार करके, अलार्म चुप किया लेकिन उनको कैसे चुप करेंगे, यहां तो सुना ही पड़ता है भोर में भी राधे राधे, है ना, हरे कृष्ण कोई ना कोई चैंटिंग करता रहता है। सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर बातें लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये दुख अधिकम निराकृतम विशुद्धा चंचिन भोग वासना का संता भून जाना एवं वर्तमान निर्देशेन भोग काल एवं भगवत भक्ति प्रभावेण विशुद्धा उद्दिष्टा। कहते भोग काल में भी वो लोग सुख पूर्वक भोग भोगते हैं, जो कुछ भी भोग उनके पास है वो मरते हुए नहीं भोगते हैं, सुख पूर्वक वो लोग भोग करते हैं। और कहते हैं ये भक्ति के प्रभाव के कारण उत्तर उत्तर उन भोग में उनकी बुद्धि लगने नहीं देती है, भक्ति बोले मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है, हा? एक कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी को मिल गया था, मैंने पुस्तकों में पाठ किया है, वो कहते जब से इस व्यक्ति को मिला ना प्रभुपाद जी को, तब से ठीक से हम भोग भी नहीं कर पाते हैं और कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है भोग नहीं कर पाते हैं, सुख से भोग करने का तो मरना, उसमें दुख बुद्धि होना ये भक्ति का स्वभाव है। अब उसको हम दोष मानेंगे तो फिर तो हो गया मंगल। सो देखिए समुद्र मंथन के इस जो कार्यक्रम प्रारंभ में भी हम लोग अपने मन को मत ले जरा, मैं कहाँ हूं और मेरे पास कितना सुंदर अवसर है। तस्य भगवत पदम स्थानम यान्ति लभन्ते, अंत तो वो भक्ति अंत में उन सकाम भक्तों को भी सुख भोगवा करके ले जाएगी वैकुंठ, लेकिन वो सुख भोग भारी पड़ेगा, बहुत भारी काम है सुख भोग। दुख भोग आसान है, दुखी होकर के हरे कृष्णा करते हैं, लेकिन सुख में भजन साधन इसलिए वृंदावन ब्रजवासी भक्तों को इन सारी सोच या इस प्रकार का मंथन अपने चित्त में समुद्र मंथन के साथ करना चाहिए। जो जो आइटम निकलता है कौन कौन ले रहा है देखिए आप, और लक्ष्मी जी स्वयं विष्णु को बोले ये इतने बड़े पुरुष को मैं छोड़ करके इनकी उपेक्षा करके मैं जाऊंगी, कम से कम लक्ष्मी के चरणों का अनुसरण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, और पदार्थ के पीछे भागेगा तो देवता या असुर दो में से एक, और डिजाइन भी वही, वो भक्ति असुर तो नहीं बनने देंगे, सुख भोग के लिए स्वर्ग में डाल देंगे, लेकिन 36,000 इसके बाद गया। हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे।